महाबंध पुस्तक पांचवी लेक्चर नंबर 11। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंता, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो वैच्छायाणम्, नमो लोहे सर्वसामूलम्, भूतबलि प्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकं, महाधवलविख्यातम् महाबंधम नमाम्यहम्। यह श्री भगवान भूतबली भट्टारक प्रणीत महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जिसका दूसरा नाम है महाधवल। उसमें पांचवी पुस्तक में तीसरा जो अनुभाग बंध अधिकार चल रहा है, उसको देखते हुए अभी हम पृष्ठ संख्या 28 पर आ गए। 28 यह अभी अपने बंध सन्निकर्ष की प्ररूपणा में कल से जघन्य का प्रकरण शुरू हुआ है, और अभी हम ओघ में देख रहे थे। ज्ञानावरण में हमने देखा कि इसका जघन्य करने वाला अन्य चार का भी जघन्य करता है, क्योंकि जघन्य तो क्षपक के होता है अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में। उसके बाद दर्शनावरण में हमने देखा था जहाँ निद्रा निद्रा का जघन्य है, निद्रा निद्रा का जघन्य कहाँ है याद है? संयम के सन्मुख वाला मिथ्या दृष्टि, तो वहाँ उसका जघन्य है। तो कहते हैं प्रचला प्रचला स्त्यांग बुद्धि का जघन्य भी हो सकता है, अजघन्य भी हो सकता है, और अजघन्य होगा तो छह स्थान पतित वृद्धि को है। अन्य जो छह दर्शन आवरण वो भी नियम से बंधेंगे, परंतु वो अनंत गुण वृद्धि को लिए हुए हैं, क्योंकि उनका जघन्य अपने अपने बंध विच्छित्ति के समय में होगा। उसके बाद निद्रा के जघन्य का करने वाला जो क्षपक अपूर्व करण है, वो प्रचला का नियम से बंद करता है, वो जघन्य भी होगा अजघन्य, अजघन्य होगा तो अनंत छह स्थान पतित वृद्धि रूप होगा। चार दर्शनावरण का अनंत गुण वृद्धि वाला होगा। अब चार की आपस में लगाएंगे, जहाँ एक कायनी चक्षु दर्शनावरण का जघन्य होगा तो अन्य तीन दर्शनावरण का नियम से बंद होगा, वहां नियम से जघन्य ऐसा लगा। बाकी तो साता का है तो असाता का बंध नहीं है, आयु एक बनती है तो अन्य का बंध नहीं है, गोत्र एक बनता है तो दूसरे का बंध नहीं है। अब यहाँ मुनि की बात शुरू करते हैं हम 28 पृष्ठ पर, नीचे का पैराग्राफ। मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग का बंध करने वाला जीव, यहाँ पर भी मिथ्यात्व का जघन्य अनुभाग बंध तो संयम के सन्मुख वाले को होगा, क्योंकि मिथ्यात्व के सन्मुख वाले तो सभी चारों गति के जीव होते हैं, परंतु पहले से सातवें में जाने वाले को वो जघन्य होगा। अब वह जीव क्या क्या बंध करता है, अभी हमें स्वस्थान में लगाना है तो मोहनीय का मोहनीय के साथ ही लगाना है, तो वहां अनंतानुबंध चार का नियम से बंध करता है। नियम से बंधने वाले तो 16 कषा है यहाँ पर, परंतु अन्य के बारे में अलग कथन होगा, अनंतानुबंधी के बारे में अलग है। तो अनंतानुबंधी का जघन्य भी कर सकता है, अजघन्य भी होगा, और अजघन्य करता है तो छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। फिर 12 कषा है पुरुष वे हास्यरति और भय जुगुप्सा का नियम से बंद करता है, क्योंकि अभी ये सम्यक सन्मुख अवस्था है उसकी, कषाय तो सभी अभी तो बंधे ही बंधेंगे, अभी एकमात्र पुरुष वेद ही बंधेगा, क्योंकि बंधापसरण के स्थानों में नपुंसक वेद और स्त्री वेद के बंधापसरण हुआ है, अभी यहाँ पुरुष वेद बंध रहा है। और अतिशोक का भी बंधापसरण अभी कुछ काल के लिए हुआ है, बाद में भले उसका बंध हो जावे सम्यक्त होने के बाद, परंतु सम्यक्त सन्मुख अवस्था में तो हास्य और रति का बंध हो रहा है, भय तो जुगुप्सा तो ध्रुवबंधी है ही, तो ये नियम से बनती है, परंतु वो कैसी है तो अनंत गुणवृद्धि रूप होता है, क्योंकि ये सभी आगे चलकर जहाँ तक बंद है वहाँ उसका जगन्य होगा अपने अपने बंद विच्छित्ति के समय में, इसलिए यहाँ वो अनंत गुण वृद्धि रूप है। इसी प्रकार यानी जैसा मिथ्यात्व का देखा ऐसा ही अनंतानुबंधी चार की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, यानी वहाँ हम अनंतानुबंधी क्रोध को रखेंगे, उसके साथ अन्य तीन और मिथ्यात्व नियम से बनते हैं जो जगन्य भी बन देंगे अजगन्य इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध के जगन्य अनुभाग का बंध करने वाला जीव ये कौन सा है अश्विन भाई? चौथे से सातवें में जाने वाला, यानी उसको भी हम संयम के अभिमुख वाला लेंगे, चौथे गुण स्थान वाला। तो उसके वो जघन्य बंध है, वो तीन कषायों का नियम से बंद करता है। कौन से तीन? अप्रत्याहार मान माया लोभ। किंतु वो जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है, क्योंकि चार साथ में बंधने वाली है तो जघन्य के साथ जघन्य भी बंद हो सकता है या उसकी रेंज में बंधेगा। यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है वो छह स्थान पतित तो वृद्धि रूप होता है। अब यही जीव जो अप्रत्याख्यानावरण का जघन्य कर रहा है, यानी चौथे से सातवें के सम्मुख वाला जो अंतिम समय उसका चौथे का, उस समय वो आठ कषाय और पांच नौ कषाय का नियम से बंद करता है। ये पांच नौ कषाय कौन से है? आठ कषाय में प्रत्याख्यानावरण संज्वलन और पांच नौ कषाय में पुरुष वेद हास्यरति और वैजुगुप्सा, इनका नियम से बंद करता है जो अनंत गुण वृद्धि रूप होता है। क्योंकि हम यहाँ चौथे में है अभी अंतिम समय में और ये तो आगे चलकर बनती रहती है, इसलिए यहाँ उसका अनंत गुण वृद्धि रूप होगा। ये ख्याल में आई बात?
पहले तो 12 बताए थे।
हाँ पहले 12 बताए थे क्योंकि वो मिथ्यात्व से सातवें में जाने वाला है। तो उसमें तो अनंत गुण वृद्धि रूप बनते हैं ऐसा। अभी अप्रत्याख्यानावरण के साथ हम देख रहे हैं सन्निकर्ष। तो हाँ अभी चौथे से सातवें में जाने वाला है, तो चौथे गुण स्थान वाला अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन सबका बंद करता है, परंतु अप्रत्याख्यान का जगन्य होगा, परंतु प्रत्याख्यान और संज्वलन का यहाँ पर अनंत गुण वृद्धि रूप पाया जाएगा, वो जगन्य नियम से बनता है, परंतु वो यहाँ उसकी उसका अनुभाग अधिक बन रहा है, आगे चलकर वो जगन्य बंधेगा। इसी प्रकार अप्रत्याख्यान मान आदि तीन कषायों की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, एक एक को रखना और कहेंगे अन्य तीन का नियम से बंद होता है वो जगन्य भी होता है जगन्य भी होता है। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध का ये पांचवें से सातवें में जाने वाला जीव है, वो जगन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव शेष तीन कषायों का यानी प्रत्याख्यानावरण मान माया और लोभ का नियम से बंद करता है, किंतु वह जगन्य अनुभाग बंद भी करता है और अजगन्य अनुभाग भी बंद करता है। यदि अजगन्य अनुभाग करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। ये ख्याल में आई बात? पांचवें से सातवें में जा रहा है, प्रत्याख्यानावरण चारों बन रहे हैं और सब जगन्य भी बन से हम एक के साथ दूसरे का सन्निकर्ष देख रहे हैं। एक का जगन्य हमने फिक्स रखा, बाकी तीन का जगन्य भी हो सकता है अजगन्य भी, और अजगन्य की रेंज तो छह स्थान पतित वाली है। अब यहाँ और नियम से बंधने वाली कौन है? तो चार संज्वलन और पांच नौ कषाय का नियम से बंद करता है, ये कैसा होगा? अभी अनंत गुण वृद्धि रूप होता है, क्योंकि इनका बंध तो आगे के गुण स्थानों में है और वहां जाके जगन्य होगा। जैसे संज्वलन का तो नौवे में जगन्य होगा, पांच नौ कषाय का अपने बंध विच्छित्ति के समय जगन्य होगा। इसी प्रकार शेष तीन प्रत्याख्यानावरण कषायों की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। वैसे मुनि का वैसे तो आसान है क्योंकि बंध विच्छित्ति गुणस्थान के अनुसार होती है विशेषता, ये आसान रहती बात। क्रोध संज्वलन के जगन्य अनुभाग का बंध करने वाला जीव, अभी संज्वलन में लेना, तीन संज्वलनों का नियम से बंद करता है जो अनंत गुण वृद्धि रूप होता है। देखो जब हमने अनंत अनुबंधी का एक का देखा तो अन्य तीन का जगन्य हो सकता है देखा, वो प्रत्यक्ष अनावरण एक का जगन्य तो अन्य का भी हो सकता है, प्रत्यक्ष अनावरण का एक जगन्य तो अन्य भी हो सकता है, पर संज्वलन में ऐसा नहीं लिया क्योंकि उसकी बंध विच्छित्ति अंतरम अंतर्मूर्त के बाद होती है। जहाँ क्रोध की बंध विच्छित्ति है वहाँ उसका जगन्य है और मान की आगे चलकर है बंध विच्छित्ति, तो क्रोध के जहाँ जगन्य है वहाँ जो मान माया लोग बंध रहे वो अनंत गुण वृद्धि में बंध रहे। इसलिए क्रोध संज्वलन का जहाँ जगन्य अनुभाग का बंध है वहाँ तीन संज्वलन का नियम से बंद करता है जो अनंत गुण वृद्धि रूप होता है। अब जहाँ मान संज्वलन का जगन्य अनुभाग बंद करने वाला जीव क्या ये क्रोध को बांधेगा? नहीं, तो दो संज्वलनों का नियम से बंद करता है और वो कैसा है? अनंत गुण वृद्धि रूप है। माया संज्वलन के जगन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव लोभ संज्वलन का नियम से बंद करता है जो अनंत गुण वृद्धि रूप होता है। लोभ संज्वलन के जगन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव शेष संज्वलनों का अबंधक होता है। क्या लिमी आई नहीं बताई? हाँ, अब आगे हाँ लोग आखिर तो बनता है नौवे के अंत में, अन्य कोई मूल्य बन ही नहीं रहा वहाँ पर, अकेला लोग का ही बंध है। ये तो कषाय की बात की, अभी नौ कषायों में से और पुरुष वेद को भी अभी बताएंगे। स्त्री वेद के जगन्य अनुभाग का बंध करने वाला जीव, अभी ये कहाँ सोचेंगे हम? प्रायोगिक लब्धि के अनुसार देखेंगे तो तत्प्रायोगिक विशुद्ध है, वो मिथ्यात्व सोलह कषाय भय जुगुप्सा का नियम से बंद करता है जो अनंत गुण वृद्धि रूप होता है। क्योंकि हमने देखा था मिथ्यात्व का और सोलह कषाय का भय जो अपना अपना जो है, मिथ्यात्व अनंत अनुबंधी का तो संयम के सन्मुख वाले को जगन्य होगा और जहाँ श्रीवेद की बंध विच्छित्ति है या उसका जहाँ जगन्य हम कहेंगे वहां पर उसका अनंत गुण वृद्धि वाला है। वो प्रत्यक्ष अनावरण तो चौथे से सातवें में जाने वाले का जगन्य, प्रत्यक्ष अनावरण का पांचवें से सातवें में जाने वाला, संज्वलन का था नौवे में जगन्य, उसकी अपेक्षा जहां स्त्री वेद का जगन्य है वहां वो अनंत गुण वृद्धि रूप होता है। भय जुगुप्सा का भिक्षपक आठवें में जगन्य होगा तो स्त्री वेद के जगन्य का करने वाले के अनंत गुण वृद्धि रूप होगा। हास्य रति और अरति शोक का ना 33 में तो वो छठे गुण स्थान के बंद मनुष्य गति वाली बात है, 33 नंबर पर मनुष्य गति की बात है। स्त्रीवेद तो बहुत पहले है, स्त्रीवेद का स्थान तो हमने देखा था कि गति के साथ नहीं जाता, अलग से जाता है, वो संस्थान और सहनन में उसको लेते हैं बीच में। इसका निवृत्त के पहले के बाद में मुझे याद नहीं है, मुंडक संस्थान के तो बाद ही है परंतु नगरोध के भी बाद है के पहले मुझे याद नहीं, क्योंकि स्थिति बंद की अपेक्षा दूसरा भाग दूसरे भाग में आना चाहिए क्योंकि स्थिति बंद का वहीं से शुरू होता है। फिर से देखते हैं जगन्य में होना चाहिए ना, ये मिला मेरे को पहले पेज निकाला तो मिला, कल ढूंढा तो नहीं मिला। स्थितिबंध स्थान प्ररूपणा में है वो मेरे ख्याल से, उत्कृष्ट स्थितिबंध है ये जघन्य स्थितिबंध, मेरे ख्याल से 17 पे होगा, कल को होगा। नहीं तो स्थिति बंध स्थान नहीं मिला, वो यही पर मिला। नहीं ये दो और तीन पेज में ही मिला, देखो تو اگرم گیا سکی بندی کی پرتنا سماپت ہوئی. ہاں ہمیں جگنیہ دیکھنا ہے, اس میں جگنیہ کی بات آتی ہے نا. ہم نے اس میں نمبر بھی ڈالے تھے یار, شروعات میں ہی کہیں کہیں تھا وہ کبھی. ہاں اس میں تو جلدی ملے, اس میں بھی ہم بار بار دیکھتے تھے. ان کو دوسری کاپی دینا تھا, دوسرے باپ کی دوسری کاپی. شروعات میں ہی تھا وہ اور ہم ہمیشہ اس کا ریفرنس دیکھتے تھے. وہاں تو انتر کی بات ہے. سر ہم اس کو ڈیزائر کرتے تھے ہمیشہ. प्रतिबंध स्थान प्ररूपना में वो मिला था ना पेड़ों को. ये नहीं मिलता तो ऐसा लगता है कितनी बार हम उसी को रेफर लेके आगे बढ़ते थे. دوسرے میں ہی تھا کیونکہ تیسرے میں تو وہ تو سنکش سے شروع ہوتا ہے. وہاں میرے خیال سے وہ اتر پرکرتیوں میں ہوگا, ہم مول پرکرتیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں. उत्तर प्रकृतियों में सिटी बंद स्थान देखेंगे. उत्तर सिटी बंद स्थान, हाँ 221-23 समय लब्धिसार में, वो प्रथम ऑप्शन समय तो में है. ना ये उत्तर प्रकृति में मिलना चाहिए मेरे ख्याल से. उसी में मिलेगा आपको समय ज्ञान चंद्र का पहले अधिकार में. हाँ वही है पहला अधिकार. आपको कौन सा श्रीवेद का स्थान देखना है ना. تیسرے بھاگ میں دیکھیں گے. स्त्री वेद का 30 नंबर का है।
30 नंबर का
देखो, सभी अभी स्थान पहले से देख लेते, पहले से ना नरकायु, दूसरा तिरंचायु, तीसरा मनुष्य, चौथा देवायु, पांचवे में नरगति नरगत्यानुकूल, फिर छठे में सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण, सूक्ष्म अपर्याप्त प्रत्येक, फिर बादर अपर्याप्त अपर्याप्त साधारण, बादर अपर्याप्त प्रत्येक, विन्द्रिय अपर्याप्त, इंद्रिय अपर्याप्त, चतुरिंद्रिय अपर्याप्त, असंगी पंचेन्द्रिय अपर्याप्त और संगी पंचेन्द्रिय अपर्याप्त, 14 हो गया। 15 में सूक्ष्म पर्याप्त साधारण, सूक्ष्म पर्याप्त प्रत्येक 16, 17 में बादर पर्याप्त साधारण, 18 में बादर पर्याप्त प्रत्येक, इसी यहीं पर एक इंद्रिय स्थावर आतक भी समाप्त हो गया, यह 18 अवस्था। 19 में द्विंद्रिय पर्याप्त, 20 में तीन्द्रिय पर्याप्त, 21 में चतुरिंद्रिय पर्याप्त, 22 में असंगी पंचेन्द्रिय पर्याप्त, 23 में तिरंज गति तिरंज गत्यानुकूल उद्योग, 24 में नीच गोत्र, 25 में अप्रशस्त विहाय गति दुर्भग दुष्वर अनादेय, 26 में मुंडक संस्थान असंप्राप्त रूपाठी का सहन, 27 में नपुसक वेद, ये 27 और 30 याद रखना, 28 में वामन संस्थान के लिए सहन 5 नंबर का, 26 में हमने 6 नंबर का लिया सहन और संस्थान, 27 में नपुसक वेद लिया, 28 में वामन संस्थान के लिए सहनन, 29 में कुब्जक संस्थान अर्धनारायण सहनन, 30 में स्त्री वेद, 31 में स्वाति संस्थान नाराज सहनन, 32 में नगरोध परिमंडल वज्र नाराज, 33 में मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी औदारिक औदारिक अंगोपम वज्रशुभ नाराज, और 34 में वो छठे गुण स्थान की अस्थिर अशुभ अयश स्थिति रतिशो का सा था, तीसरे में भी नहीं ना, चौथा अनुभाग है, तीसरी पुस्तक में, हाँ तीसरी पुस्तक में तो बंध सन्निकर्ष की बात थी,
ये तो पांचवा,
हाँ हमारा पांचवा भाग चल रहा है, चौथा और पांचवा अनुभव का है, हाँ ऐसा कभी होता नहीं है, पता नहीं हमने पहला देखा ही नहीं, क्योंकि पहले में तो प्रकृति बंध है, उसमें उत्कृष्ट की बात कैसे होगी, ये यहाँ पर 116 पेज है, 116-17 तीसरे भाग में, हम दूसरे में ढूंढ रहे थे,
तीसरे में है 116
जवन्य संस्थान बंध सन्निकर्ष प्ररूप नामे, कुछ 17 इतना ख्याल था, 116-17 हम हमेशा 117 पर देखते थे, यानी 117-18 को बात है सर, 30 नंबर पर हमने देखा था ना अस्थिरी वेद की बंदे विचे, चलो तो हम यहाँ ये बात पढ़ रहे थे 29 नंबर के पेज पर, स्त्री वेद का तो जघन्य अनुभाग बंद करने वाला जीव, मिथ्या तो 16 का वो तो देखा हमने, हास्य रति और अति शोक दोनों का ही कदाचित बंद करता है, जो अनंत गुण वृद्धि रूप होता है, क्योंकि अगर प्रायोगिक लब्धि के स्थान देखेंगे तो ये तो 30 नंबर पर है, और अति शोक तो 34वें में, हास्य रति का तो बंद रुकता नहीं है, इसलिए उसको अनंत गुण वृद्धि रूप कहा। इसी प्रकार नपुंसक वेद की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, वो भी उसकी बंध विच्छित्ति हमने देखी थी, वो 27वें स्थान पर बंध अपसरण मिथ्या दृष्टि के, उसकी अपेक्षा हम यहाँ जरा सोच सकते हैं, वहां तो स्थिति बंध की बात थी, परंतु उससे हमें इसका ख्याल आ सकता है। पुरुष वेद से, पुरुष वेद के चाहिए ना, जगन्य अनुभव का बंद करो, पुरुष वेद के करो। मेला कहाँ करना है? पुरुष वेद के जगन्य अनुभव का, पेज नंबर 29। जगन्य अनुभव का बंद करने वाला जीव, ये पुरुष वेद का जगन्य कहाँ होगा अश्विन भाई? हाँ, नवे के पहले भाग में जहाँ बंद विच्छित्ति होती है, चार संगलन का नियम से बंद करता है, जो अनंत गुण वृद्धि रूप होता है। ये कौन से वेद से चढ़ने वाला जीव होना चाहिए?
पुरुष,
क्योंकि वो तो लंबा काल है। तो चार संगलन का अनंत गुण वृद्धि रूप है, क्योंकि उसकी बंद विच्छित्ति बाद में होती है। हास्य के जगन्य अनुभव का बंध करने वाला जीव, हास्य का बंध कहाँ तक है? आठवां, जो सातवां भाग है, शपक वाला। हाँ, शपक लेना ना, आठवां का अंतिम समय। वो जीव चार संज्वलन और पुरुष वेद का नियम से बंध करता है, जो अनंत गुण वृद्धि रूप होता है। रति, भय और जुगुप्सा का नियम से बंद करता है, किंतु वह जगन्य अनुभाग भी बंद करता है और अजगन्य अनुभाग बंद भी करता है। फिर भी आठवां गुणस्थान है, इसलिए भी परिणामों की डिफरेंस है, इसलिए जगन्य भी अजगन्य भी दोनों लिया। यदि अजगन्य अनुभाग करता है तो छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। अनुभव की अपेक्षा अलग है,
स्थिति समान कर दीजिए।
नहीं, स्थिति में भी वेरिएशन है,
स्थिति में भी वेरिएशन है।
इसी प्रकार रति, भय और जुगुप्सा की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना, एक एक को जगन्य पे रखना और उसके साथ सन्निकर्ष लगाना। रति के जगन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, अब ये छठे गुणस्थान वाला है ना, तो रति के जगन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव चार संज्वलन, पुरुष वेद और भय जुगुप्सा का नियम से बंद करता है, जो अनंत गुण वृद्धि रूप होता है, क्योंकि वो आगे चलकर बनती रहती है। ना ना ना, वहाँ तो हास्य रति बंधेगी,
गलत है।
वहाँ कैसे होगा?
वहाँ पे
इन बिटवीन होगा, कल रति का जगन्य कहना है तो अति संकलेश में उसका उत्कृष्ट होगा, तत्प्रायोग विषय के लिए। शोक का नियम से बंद करता है, किंतु वह जगन्य अनुभाग भी बंद भी करता है और अजगन्य अनुभाग बंद भी करता है। यदि अजगन्य अनुभाग बंद करता है, वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। इसी प्रकार शोक की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। यानी जानने लायक बात, स्त्री वेद के जगन्य के साथ हास्यरति और अतिशोक सभी अनंत गुण वृद्धि रूप बनते हैं, बाकी तो बनते ही है, परंतु ये दो युगल भी अनंत गुण वृद्धि रूप होते हैं। चलो अभी आगे बढ़ेंगे, अभी नाम कर्म की बात होगी यहाँ पर। मोनी की बात तो हो गई, नाम कर्म की। नरक गति के जगन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, मनुष्य तीर्यंच है, अभी हम इसको संकलेश नहीं कहेंगे, तत्प्रायोग कहेंगे कि मध्यम परिणाम लेना, नहीं तत्प्रायोग में होगा ना। हाँ, अभी सोचने के लिए हम उसकी बात कर सकते हैं, पर उस उतनी योग विशुद्धि वाला। वह जीव पंचेंद्रिय जाति वैकृत शरीर तेजस शरीर कार्मण शरीर वैकृत अंगोपांग प्रशस्त वर्ण चतुष्क अप्रशस्त वर्ण चतुष्क अग्र लघु चतुष्क त्रस चतुष्क और निर्माण का नियम से बंध करता है जो अनंत गुण वृद्धि रूप होता है। देखो अभी हमको कैसे सोचना वो देखेंगे। नरक गति तो अप्रशस्त है, उसका जघन्य कब होगा तो कंपेरेटिवली विशुद्धि में होगा, बराबर। और पंचेंद्रिय जाति का जघन्य कब होगा, जब नरक गति का उत्कृष्ट बांध रहा है तो पंचेंद्रिय जाति का जघन्य बंधेगा। नरक गति का उत्कृष्ट मिथ्या दृष्टि बांधता है, वहां पंचेंद्रिय जाति का जगह हमें जगह नहीं सोचना, उत्कृष्ट नहीं सोचना। जब हम उत्कृष्ट की प्ररूपना देखते थे तो पंचेंद्रिय जाति तो क्षपक में बनती थी उत्कृष्ट, यहाँ उसका जघन्य में जघन्य बंद कराना है तो हम कहाँ कर सकते हैं, तो जो नरक गति का उत्कृष्ट बांध रहे उसके साथ तो कर सकते है। या नारकी जी जब तिर्यंच गति का उत्कृष्ट बांध रहे तब भी संकलेश परिणाम में पंचेंद्रिय जाति का जघन्य करेंगे। अब उस जघन्य की अपेक्षा यहाँ नरक गति का जहाँ जघन्य हो रहा है यानी विशुद्धि है थोड़ी ज्यादा, तो वहाँ पंचेंद्रिय जाति का कैसा होगा, तो अनंत गुण वृद्धि रूप होगा। वैकृत ये सभी प्रशस्त प्रकृतियों का इसे समझना, परंतु यहाँ उपघात अप्रशस्त है और प्रशस्त वर्ण चतुष भी अप्रशस्त है, इन दोनों को भी अनंत गुण वृद्धि रूप लिया है क्योंकि उसका जघन्य कहाँ होगा, आठवें में होगा क्षपक में, उपघात का भी और अप्रशस्त वर्ण चतुष्क का, उसकी अपेक्षा यहाँ कैसा होगा उसका अनंत गुण वृद्धि। समझ में ये बात, यहाँ कुछ प्रशस्त भी लिया और अप्रशस्त भी, परंतु नरक गति का उत्कृष्ट नहीं बांध रहा है, जघन्य बांध रहा है। अब उसके साथ कुंडक संस्थान नरक गत्यानुपूर्वी अप्रशस्त विहाय गति और अस्थिर आदि छह का नियम से बंद करता है क्योंकि नरक गति के साथ यही तो बनती है, किंतु वह जघन्य अनुभाग बंद भी करता है और अजघन्य अनुभाग बंद भी करता है। यदि अजघन्य अनुभाग बंद करता है वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है क्योंकि नरक गति के जघन्य के साथ इनका भी जघन्य हो सकता है। इसी प्रकार नरक गत्यानुपूर्वी की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, अन्य की मुख्यता से नहीं कहा, नरक गत्यानुपूर्वी की, क्योंकि हुंडक संस्थान का जघन्य बन रहा है तो जरूरी नहीं कि नरक गति बंधेगी, अन्य के साथ भी बन सकता है, इसलिए वाइस वर्षा उसको नहीं रखा सन्निकर्ष। नरक गति के समान नरक गत्यानुपूर्वी का है, बस इतना ही बता दिया।
उससे भी विशुद्धि स्वस्थान में होगी
क्या,
क्योंकि उंडक संस्थान का
फिर से फिर दोबारा प्रश्न,
प्रायोगिक भक्ति में जो विशुद्धि होगी उससे भी स्वस्थान में विशुद्धि ज्यादा हो सकती है, क्योंकि उंडक संस्थान का तो हमने बहुत ताकि देखा है बदलाव सर।
यानी वो नियम सर्वत्र यहाँ लागू नहीं करने प्रायोगिक लब्धि वाले,
वो नहीं लागू। तो ये क्या प्रायोगिक वही क्वेश्चन है मेरा कि प्रायोगिक लब्धि में जितनी विशुद्धि होगी उससे भी ज्यादा विशुद्धि स्वस्थान में हो सकती, इसे ले सकते
ऐसा ऐसा कोई रूल नहीं कहेंगे हम। देखो वहां तो बात किसकी हो रही थी, स्थिति की है, और बंधापसरण की, बंधापसरण की विशुद्धि की अपेक्षा है, परंतु कौन सी प्रकृतियां बनती है कौन सी नहीं बनती उसकी बात की। हाँ
लोग हमेशा सिद्धि और अनुपात को कोरिलेट करते हैं
परंतु उसमें भी प्रशस्त अप्रशस्त में अलग उल्टा सुलटा हो जाता है।
अप्रशस्त में तो सिद्धि की अपेक्षा हमेशा कोरिलेट
करते आए थे
पर वो यहाँ पे
नहीं लागू हो रहा क्योंकि नरक गति के जघन्य के साथ मुंडक संस्थान का भी जघन्य ले रहे हैं। वहां तो बस उसकी बंध विच्छित्ति हुई है वो प्राय लब्धि वाले के
बंद
बस इतना ही यानी उसमें प्रकृति की बात लेनी मुख्यता से। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो और ख्याल में आएगा क्योंकि नरक गति बनती है तो यहाँ तो नियम से बंद करता है तो इसलिए यहाँ केवल नरक अत्यनपूर्वी को लिया वैसा सन्निकर्ष अन्य संस्थान वगैरह को नहीं लिया है। अभी वो अभी हम जब आगे पढ़ेंगे अभी तो हमने नाम कर्म पढ़ना शुरू किया अभी हम मनुष्य गति की बात पढ़ेंगे मुंडक संस्थान की पढ़ेंगे अलग अलग पढ़ेंगे तो कुछ ख्याल में बदल जाता है। अभी हमने पढ़ा है क्या अभी तो हम नरक गति को पढ़ रहे हैं सबको पढ़ने वाले मनुष्य गति को भी पढ़ेंगे मुंडक संस्थान को भी पढ़ेंगे हाँ तो आएगा ना थोड़ी धीर तो रखो। तो हमने क्या देखा जैसा नरक गति का है वैसा ही नरक गत्यानुकूली का है बस इतनी बात अभी हमने देखी। अब तिर्यंच गति के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जी हमें उत्कृष्ट नहीं सोचना है जघन्य सोचना है पंचेंद्रिय जाति औदारिक शरीर तेजस शरीर कार्मण शरीर समचतुरस्य संस्थान औदारिक अंगोपांग वज्रषभ नाराज सहनन प्रशस्त वर्ण चतुष्क अप्रशस्त वर्ण चतुष्क अगुरु लघु चतुष्क प्रशस्त विहाय गति त्रस चतुष्क स्थिरादि छह और निर्माण का नियम से बंद करता है जो अनंत गुण वृद्धि रूप होता है। ये याद है तीरंज गति का जघन्य कौन करता है सातवें नरक का नरक सम्यक्त के समय ख्याल में यही बात वहां वो तीरंज गति का जघन्य बंद रहा है सातवें नरक का नरक सम्यक्त सम्मुख अवस्था में तीर्यंच गति का जघन्य अनुभाग बंद कर रहा है वहां तो ये सब बंद ही रहे हैं नियम से वो पंचेंद्रिय जाति ही बांध रहा है परंतु पंचेंद्रिय जाति का जघन्य कौन बंध रहे सर्व संकलेश वाला मिथ्या दृष्टि बांध रहे और यहां तो हमने सर्व विशुद्ध मिथ्या दृष्टि लिया है तो उसकी अपेक्षा वो कैसा बंद होगा तो अजघन्य अनंत गुण वृद्धि वाला होगा यही बात बाकी प्रशस्त प्रकृतियों में लगाना वो प्रशस्त प्रकृतियों की बात करेंगे अप्रशस्त वर्ण उपघात इसका जघन्य कौन करेगा शप का पूर्व करण वाला उसकी अपेक्षा यहाँ कैसा होगा अनंत गुण वृद्धि वाला तो ये नियम से बंधने वाली प्रशस्त और प्रशस्त प्रकृतियां सभी अनंत गुण वृद्धि रूप बंधेगी। तीर्यंच गत्यानुपूर्वी का नियम से बंद करता है किंतु वो जघन्य अनुभाग बंद भी करता है और अजघन्य अनुभाग भी करता है क्योंकि गति के साथ उसकी गत्यानुपूर्वी बनती है वो जघन्य के साथ जघन्य भी बन सकती है। यदि अजघन्य अनुभाग बंद करता है वो छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। उद्योग का कदाचित बंद करता है वो अनंत गुणा अधिक होता है हमने देखा था ना यहाँ तो उसका उत्कृष्ट बंद है उद्योग का ये मिथ्या दृष्टि को तो तिरंज गति के साथ ये कदाचित बन सकती है परंतु ये तो प्रशस्त प्रकृति है वहां तो मिथ्या दृष्टि सर्व विशुद्ध है इसे अनंत गुणा अधिक लिखा है। इसी प्रकार तीर्यंच गत्यानुपूर्वी की मुख्यता से सन्निकर्ष जाना चाहिए, यानी तीर्यंच गति के बदले गत्यानुपूर्वी रखो, बाकी स्टेटमेंट ऐसा ही होगा। अब मनुष्य गति के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव पंचेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मन शरीर, औदारिक अंगोपांग, प्रशस्त वर्ण चतुष, अप्रशस्त वर्ण चतुष, अगरु लघु उपघात, अभी ये दो ही लिए अपर्याप्त संबंधी ले रहे हैं, त्रस बादर प्रत्येक और निर्माण का नियम से बंद करता है जो अनंत गुणा अधिक करता है। यहाँ पर भी ऐसा ही समझना, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक तेजस वगैरह जो प्रशस्त प्रकृतियां हैं उनका जघन्य अति संकलेश वाले को होगा, और यहाँ कंपैरेटिवली वो मनुष्य गति बांध रहा है, इतनी तो विशुद्धि है इसलिए वो अनंत गुणा अधिक बंधेगा। उपघात का और अप्रशस्त वर्ण चतुष्क का जघन्य तो आठवें में होता है, यहाँ वो अनंत गुणा अधिक होगा। अब ऑप्शनल में छह संस्थान, छह सहनम, दो विहाय गति, अपर्याप्त और स्थिरादि छह युगल का, युगल कहा यानी दोनों ले ऑप्शन में, स्थिरादि छह नहीं कहा, स्थिरादि छह युगल कदाचित बंद करता है, क्योंकि प्रतिपक्षी को दोनों को लेना कदाचित नहीं, किंतु वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। देखो ये सब मध्यम परिणाम में जघन्य बंधने वाले हैं। छह संस्थानों का ऑप्शन ही और छह सहननों का भी अच्छा, इसका क्या प्रश्न किया आपका?
प्रदर्शक नारायण और समझ वो दोनों प्रशस्त प्रकृति
है। हाँ, मनुष्य गति भी प्रशस्त है।
अच्छा, तो इसके साथ इसका जगह
प्रशस्त में वो नहीं लगाना, स्थिति की बात वो नहीं मत सोचना, प्रशस्त प्रकृतियों में स्थिति की अपेक्षा मत सोचो, क्योंकि अनुभाग में अलग बात होती है, अनुभाग में बात अलग होती है। वहाँ क्या लिया हमने? तीर्यंच गति के साथ वज्रेश्वर नारद सहनन लिया है, वो सम्यक तो के सम्मुख वाली बात है, उसका लघन्य कौन करता है? सातवें नरक का नारकी, तीर्यंच गति का जघन्य, उसका उत्कृष्ट है आठवें में, वज्रेश्वर नारद सहन आठवें में बनता ही नहीं है, चौथे में देवों के। अभी क्या फिर प्रश्न आपका घोटाला कुछ हो रहा है? मिथ्या दृष्टि करेगा, मध्यम परिणाम वाला करेगा। तो मनुष्य गति के जगने के बारे में हमने कितनी बात, वो तो बाकी सोचेंगे, असंख्यात लोकमान अंतर के बारे में कितनी बार उसका चर्चा की थी, याद है क्या? स्वामित्व ना जगन्य का, वायु का इतना संबंध नहीं है वहां पर, अंतर के लिए असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण केंद्रीय में रहते हुए भी मनुष्य गति का जगन्य असंख्यात लोक की बात करता है, क्योंकि वो मध्यम परिणाम से होता है, ये बात हमने देखी थी। میں آپ کو اس کا سوامی بتاتا ہوں. اور سوامی میں اور وہاں انتر تھا, تو سوامی میں پنچیندری کہاں تھا اور وہ بات گھٹت نہیں ہو رہی تھی, آپ کو یاد ہوگا. تو ایک اندری میں بھی وہ جگہ نہیں ہو سکتا. منشیہ گتی کا جگن ہے نا, مدھیم پرنام والا لیا تھا ہم نے,
چاروں گتی کا.
ہاں دیکھو, منشیہ گتی چھ سنستھان, یہ 214 پیج پر ہے, چوتھی سفید. چھ سونن منشیہ گتیانو پوری, دو وہائے گتی, مدھیہ کے سبھوادی تین یوگل, اور اچھ گوتر کے جگن انوبھا کا سوامی کون ہے؟ پریورتمان مدھیم پرنام والا, اور جگن انوبھا بند کرنے والا انیتر چار گتی کا. یہاں پنچیندری سنگی متھیا رشی لکھا ہے, پرنتو وہاں ایکیندری میں بھی ہم نے گھٹت کیا تھا, اور اس کے لیے پیج نمبر آپ نے وہاں لکھا 375, کیونکہ وہ انتر کے پریورتنا میں وہ بات آئی تھی کہ ایکیندری میں جانے پر بھی اس کا جگن ہوتا ہے. چل میں نے وہ منشیہ گتی سمبندھی ہم نے وہاں بات بہت وستار سے چرچا کی تھی. ایکیندریوں کے بھی اس کا جگن ہو سکتا ہے, اس لیے وہ مدھیم پرنام میں جو جگن ہوتے ہیں. ابھی اپریاپت کو مدھیم پرنام والا کل نہیں جگن لینا, ہاں, پرنتو اس کا جگن ہے اپریاپت کا اتکرشٹ نہیں ہے. اپریاپت کا اتکرشٹ سرو سنکلش میں ہوگا, ابھی تتر آئے گا وشدھ ہے یہ, تو منشیہ گتی کا کے ساتھ اپریاپت باندھ رہا ہے, اس کا بھی جگن ہو سکتا نہیں, اس کا ہاں جگنیہ بھی کداچت بند میں آتی ہے وہ, اور جگنیہ بھی اور اجگنیہ بھی ہے. پھر سے منشیہ گتی کی بات پھر پڑیں گے. منشیہ گتی کے جگنیہ انوبھاگ کا بند کرنے والا جیو, یعنی وہ سوامی کون ہے اس کا؟ مدھیم پرنام والا. بس یعنی اس میں ایکیندری بھی کر سکتے ہیں. ہاں سبھی لینا, یہاں پر بھی سبھی لیے آگے چل کر. وہاں تو انہوں نے سیرادی چھ یوگل کا بھی لیا ہے, وہاں تو تین کا تو اس کے ساتھ ہم نے دیکھا ہی تھا, سوامی میں اس کو دیکھا تھا. یہاں بات اپنی سنی کرش کی چل رہی, وہاں سوامی کی چل رہی تھی. دیکھو ہم نے کیا کیا دیکھا, یہ نیم سے بندھنے والی کتنی کون سی ہے, تو پنچیندری جاتی اوداریک ہے, شریر ہے, انگوپانگ ہے, تیجس کارمان ہے, پرشست اپرشست ورن ہے, اگر لگو اپگات رس بادر پرتیک نرمان, یہ تو اس کے ساتھ تو بندے گی ہی بندے گی نیم سے. منشیہ گتی کے ساتھ پریاپت بھی بن سکتی ہے, اپریاپت بھی بن سکتی ہے, اس کے جگنے کے ساتھ ہم کو لگانا ہے. تو یہاں اپریاپت کو کداچت میں لے لیا, پرنتو وہ کیسی بندے گی, جگنیہ بھی بن سکتی ہے اور جگنیہ بھی, تو کداچت میں کس کس کو آپشن لیا, چھ سنستھان, چھ سہنن, دو وہائے گتی, اپریاپت اور سیرادی چھ یوگل, کداچت بندے گی, یعنی یہ دونوں ہی آپشن ہے وہاں پر, کیونکہ اپریاپت. ہاں کیونکہ اس کا بھی جگنیہ سوامی وہی ہے. تو ابھی یہ جو ہم نے چھ سنستھان وغیرہ دیکھے, اس کا جگنیہ بھی ہو سکتا ہے, اجگنیہ بھی ہو سکتا ہے, اور اجگنیہ ہوگا تو چھ ستھان پتی بدھی روپ ہوتا ہے. جیسا ہم نے منشیہ گتی کا دیکھا, ویسے منشیہ گتیان پوروی کا وہ نیم سے بند کرتا ہے, کنتو وہ جگنیہ انوبھاگ کا بھی بند کرتا ہے اور اجگنیہ انوبھاگ کا بھی بند کرتا ہے. یدی اجگنیہ انوبھاگ کا بند کرتا ہے تو چھ ستھان پتی بدھی روپ ہوتا ہے, एक ख्याल में आई बात। अब परघात उच्छ्वास और पर्याप्त ये कदाचित बंद करता है, जो अनंत गुण अधिक होता है, क्योंकि इनका वधन्य नरक गति की उत्कृष्ट के साथ बंधेगा या नरक की तिर्यंज गति की उत्कृष्ट के साथ बांधेंगे, उसको बांध सकते हैं। क्योंकि देखो नरक गति के साथ तो परघात उच्छ्वास तो बंधेगी बंधेगी, और वो प्रशस्त प्रकृतियां हैं, उनका जघन्य उसके साथ बंधेगा।
पर्याप्त
नहीं बंधेगा, अभी इसीलिए तो लिया ना, दोनों को लिया, ऊपर अपर्याप्त को कदाचित में लिया था, परंतु वो जघन्य भी बन सकता है। और यदि उच्छ्वास पर्याप्त का बंद करता है तो अनंत गुण अधिक होता है। ख्याल में यही बात। इसी सूचना देखो, अपर्याप्त का जघन्य लिया मनुष्य गति के जघन्य के साथ, अपर्याप्त का उत्कृष्ट कब होगा? एकेंद्रिय के साथ उत्कृष्ट होगा। अपर्याप्त का उत्कृष्ट बंध एकेंद्रिय के साथ हो सकता है, इसके साथ तो नहीं होगा, मनुष्य गति के साथ तो नहीं होगा, तो यहाँ उसका जघन्य हो सकता है। अब पर्याप्त की बात सोचते, पर्याप्त का जघन्य परघात उच्छ्वास वगैरह का जघन्य कब होगा? अति संक्लेश परिणाम में जघन्य होगा। अति संक्लेश परिणाम वो तो नरक गति बांधेंगे मनुष्य तिरंज, या नारकीय वो तिरंज गति के साथ बांधेंगे, तो इसलिए दोनों को कदाचित में लिया, पर्याप्त को भी और अपर्याप्त को भी। अपर्याप्त का तो जघन्य भी हो सकता है, परंतु पर्याप्त नाम कर्म है, उच्छ्वास है, परघात है, वो अनंत गुणा अधिक होता है। इसी प्रकार मनुष्य गत्यानुपूर्वी की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। यहाँ तक ख्याल में ये बात। अभी आगे देवगति के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, अभी वो तो मनुष्य तिर्यंच है और जघन्य अनुभाग बांध रहा है, मिथ्या दृष्टि होना चाहिए। पंचेंद्रिय जाति, वैक्रिय शरीर, तेजस शरीर, कार्मन शरीर, वैक्रिय अंगों का, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, अगुरु लघु चतुष्क, त्रस चतुष्क और निर्माण का नियम से बंद करता है, जो अनंत गुणा अधिक होता है। अभी इसमें जो लिया है देवगति का जघन्य कर रहा है, तो वही प्रशस्त प्रकृतियों का देवगति भी जघन्य है, ऐसा भी प्रशस्त प्रकृति है, देवगति भी आठवें गुणस्थान में उत्कृष्ट हो जाएगा, सर्व संकलेश में इनका जघन्य होगा। देखो फिर एक एक प्रकृति को लेके बात करेंगे। देवगति का जघन्य हो रहा है, यानी मिथ्या दृष्टि है, इतनी विशुद्धि की देवगति बन रहा है, परंतु उसमें से सबसे जघन्य अनुभाग बंद कर रहा है, यानी सर्वविशुद्ध नहीं कहेंगे उसको, तो यथायोग्य संकलेश है, उसको देवगति बांधने इतनी विशुद्धि है, परंतु कंपेरेटिवली संकलेश वाला है, तो वो पंचेंद्रिय जाति बांध रहा है। अब पंचेंद्रिय जाति का जघन्य कब होगा? नरक गति के तीव्र संकलेश के साथ होगा उसका जघन्य, यहाँ वो अनंत गुणा है। वैक्रिक शरीर अंगोपांग का जघन्य कब होगा? नरक गति के उत्कृष्ट के साथ होगा, यहाँ उसका जघन्य हो रहा है, जघन्य नहीं अनंत गुणा अधिक हो रहा है। प्रशस्त वर्ण चतुष्क का जघन्य कब होगा? वो तो ध्रुवबंदी है, नरक गति के साथ भी होगा। अप्रशस्त का जघन्य कहाँ होगा? क्षपक आठवें में होगा, यहाँ वो अनंत गुणा अधिक है। अगुरु लघु परघात और उच्छ्वास का नहीं, परघात श्रेणी में नहीं, उपघात का श्रेणी में, और अगुरु लघु परघात और उच्छ्वास का सर्व संकलेश में, और सबका यहाँ जगह अनंत गुणा अधिक होगा। त्रस चतुष्क का जघन्य भी नरक गति के तीव्र के साथ होगा, या नारकी बंधेगी तिर्यंज गति के साथ, यहाँ उसका अनंत गुणा होगा। निर्माण का भी जघन्य सर्व संकलेश में होगा, नरक गति के या नारकी बंधेंगे तिर्यंज गति के साथ, नारकी हो या देव, तो यहाँ वो अनंत गुणा अधिक है। ये बात ख्याल में आई? देवगति के साथ नियम से बंधने वाली जो अनंत गुण अधिक वाली प्रकृतियां बता दी। अब आगे समचतुरस्य संस्थान ये भी नियम से बनती है। देवगत्यानुपूर्वी प्रशस्त व्याहगति सुभोग सुस्वर आदेय का नियम से बंध करता है। अब आगे देखो किंतु वह जगन्य अनुभाग का भी बंध करता है और अजगन्य अनुभाग का भी बंध करता है, क्योंकि ये देवगति के साथ नियम से बंधने वाली प्रकृतियां हैं और उसका जगन्य भी यहाँ हो सकता है। और यदि अजगन्य अनुभाग का बंध करता है वो छह स्थान प्रति तो बुद्धि रूप होता है, स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ यशस कीर्ति और अयशस कीर्ति का कदाचित बंध करता है, क्योंकि देवगति के साथ ये बंधने वाली ऑप्शनल प्रकृतियां हैं, बाकी तो सारे नियम रूप है। यदि बंध करता है तो जगन्य अनुभाग का भी बंध करता है और अजगन्य अनुभाग का भी बंध करता है, इसलिए हमने पहले भी देखा था वो छह युगल उसका जगन्य और अजगन्य भी ले सकते हैं। किसका होता है ना, ये तीन ऑप्शनल होती है उसके साथ। नरगति के साथ तो अयश ही बनती है, परंतु देव के साथ वो तीनों को ऑप्शन है। ये तीन को छोड़कर देवगति के साथ तीन तीन को ऑप्शन है, हाँ बाकी का ऑप्शन नहीं है। जैसे एक इंद्रिय में सूक्ष्म की बात है तो अस्थिरादि पांच बंदे की बात, परंतु अन्य एक इंद्रियों में पर्याप्तकों के साथ ये तीन को वहां पर भी ऑप्शन है। नहीं नहीं मध्यम परिणाम में है, नहीं मध्यम परिणाम में लिया, आपको स्वामी बता दो यहाँ पर स्वामी देख लेते फिर। अभी हमने छह युगल देखे थे वहाँ, तो सुभगादि तीन युगल लेके थे मनुष्य गति वगैरह के मध्यम परिणाम वाले। एक मिनट ये तीन का देखना है ना, दुर्भगादि सिरादि तीन युगल चाहिए। शोक का तो हमने वो प्रमत्त संयत देखा था, पर हम यहाँ नाम क्रम की बात देखिए ना, मैं स्थिरादि हाँ
की बात करता
हाँ उसमें से तीन वाले को तो मध्यम परिणाम में दे दिया था उन्होंने, बाकी को कहाँ रखा है वो देख रही थी। तीन जाति सूक्ष्म पर्याप्त ये तीन युगल क्यों लिया, और अभी हमने मनुष्य गति के साथ छह युगल देखे। मध्य के सुभगादि तीन युगल ना, ना पर हम स्वामित्व में ओग में स्वामित्व देख रहे हैं, वहाँ तो उनका नाम होना चाहिए ना। एक मिनट मझिल्ल तीन युगल, मध्यम तीन युगल, सुलभ ससुरादि है ना? नहीं, मध्यम तीन युगल कौन सी होती है? मझिल्ल तीन युगल, और वहां मध्य के सुभगादि तीन युगल उस ट्रांसलेशन लिखा है उन्होंने, और बाकी तीन युगल कहाँ गए फिर?
दुर्गम दुर्गम मध्य का तो संयम के तब्बुक का लेकर होगा कि वो भी मध्यम परिणाम में,
मध्यम परिणाम में कौन बांधता है वो छोड़ो, वो सबको मिथ्या दृष्टि बांधेगा जगत, मुझे देखना है सिर अस्थिर वाले का कहाँ होता है, उसके बाद क्यों नहीं कहेंगे हम तो? स्थिर अस्थिर का जगन है, लिखा नहीं है, मनुष्य में देख लेते हैं तो तीन चौमी सुभगादि मध्य के तीन युगल यहाँ पर भी लिए तीन चौमी, परंतु वो स्थिर सिर की बात क्यों छोड़ी वहां पर? आपके पास कौन सी पुस्तक है एक्स्ट्रा? हाँ, आपके पास दूसरा एक कॉपी नहीं है? सब जगह मध्य के तीन युगल ही लिखे हुए हैं मज्जिम, देखो इसमें देवों में ही लिखा है उन्होंने, साता साता सिर सिर शुभ शुभ यश यश के चार युगलों का भंग हो के समान है, और वहां लिखा है मध्यम परिणाम में है समय दृष्टि के मिथ्या दृष्टि के, अच्छा तीन युगलों का मिथ्या दृष्टि के है और बाकी के समय दृष्टि है मिथ्या दृष्टि के, ये इतना फर्क ठीक है। ये समय दृष्टि या मिथ्या दृष्टि लेना,
और बाकी के दुर्बल दुर्बल
और उसका जो है वो मिथ्या दृष्टि के लेना, बस ये बात है। यह इसके लिए उन्होंने जगन्य के प्रकरण में साता असाता सिर सिर शुभ अशुभ यश यश का जगन्य का कौन स्वामी है, परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला जगन्य अनुभाग बंद करने वाला, चार गति का मिथ्या दृष्टि और समय दृष्टि, अब इनको छोड़ा तो बाकी जो मध्य के तीन युगल है उसका जगन्य कौन कर रहा है, क्योंकि दोनों युगल दोनों लिए दुर्भग भी और सुभग भी, तो वो दोनों का जगन्य करने वाला मिथ्या दृष्टि, इनका समय दृष्टि उनका मिथ्या दृष्टि,
इनका समय दृष्टि
दोनों,
और ये तीन युगल का
मिथ्या दृष्टि, यानी मिथ्या दृष्टि में तो दोनों सभी छह का ऑप्शन है, इसलिए मनुष्य गति के जगन्य में हमने छह का ऑप्शन लिया, देव गति के जगन्य में भी छह का ऑप्शन लिया, क्योंकि मनुष्य गति और देव गति का जगन्य तो मिथ्या दृष्टि करी, परंतु देव गति के साथ सुभग सुस्वर और आदेय ही बनते हैं, दुर्भोग दूसरे अनादे बनते नहीं,
उसका
तो जगन्य ले सकते हैं, परंतु स्थिर और अस्थिर इसमें तो ऑप्शन है, इसलिए उसको कदाचित में रखा। अपनी बात कहां से निकली थी? पेज नंबर 30 पर, देवगति का जगन्य करने वाले की बात निकली थी, इसलिए इतना इतना हमें उल्टा 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 ढूंढते गए हम। यानी मिथ्या दृष्टि तो चोर का जगन्य करता ही करता है, परंतु स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ यश यश का जघन्य तो सम्य दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों कर सकते हैं। हाँ, वो नहीं, यानी अकेले छठे को नहीं लेना, वहां हो सकता है उसका, वहां पर भी हो सकता है। अब हमने जो नीचे 30 पेज पर पढ़ा था, ये स्थिरादि तो हमने तीन युगल की देखा, कदाचित बंद में रखा उसको, और यदि बंद करता है तो जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है, क्योंकि मनुष्य गत्यानुकूल भी हो या देवगति, ये मनुष्य गति या देवगति मध्यम परिणाम में वो जघन्य बंद रहेगा, और यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है वो तो छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। इसी प्रकार देवगत्यानुपूर्वी की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। आगे बढ़े, 21 पेज पर आ गए। ये गतियों की बात हमने देखी, गतियों के बंध के साथ सन्निकर्ष लगाया। अब एकेंद्रिय जाति के जघन्य अनुभाग का बंध करने वाला जीव अब नियम से क्या बंधेगी? तिर्यंच गति बंधेगी, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, अगुरु लघु उपघात और निर्माण का नियम से बंद करता है जो अनंत गुणा अधिक है। अब देखते हैं, एकेंद्रीय जाति तो अप्रशस्त है, तो तिर्यंच गति का भी अप्रशस्त है, क्या उसका भी जघन्य हो सकता है? तो कहते हैं नहीं, उसका जघन्य तो सातवें नरक में संयुक्त के समूह वाले को देखा था, यहाँ वो अनंत गुना अधिक होगा। औदारिक शरीर, तेज शरीर, ये सब प्रशस्त प्रकृतियां हैं, क्या इसके साथ वो भी जघन्य बंधे, वो जघन्य यहाँ बंधेगी? तो कहते एकेंद्रीय का जघन्य कर रहा है, उत्कृष्ट नहीं कर रहा है, एकेंद्रीय का जघन्य कर रहा है, क्योंकि देव जब एकेंद्रीय का उत्कृष्ट करते हैं तो उसके साथ, हाँ, उसके साथ इसका तो जघन्य हो सकता है। अब हम क्या देख रहे हैं? एकेंद्रीय का जघन्य है, कंपेरिटिवली तक प्राय विशुद्ध है, इसलिए यहाँ जो औदारिक शरीर वगैरह जो प्रशस्त प्रकृतियां बंधेगी वो अनंत गुना अधिक बंधेगी, क्योंकि अति तीव्र संकलेश नहीं ना एकेंद्रीय जाति का जघन्य कर रहे हैं। एक ख्याल में कारण ख्याल में आना चाहिए। अब कहते हुंड संस्थान स्थावर दुर्भग और अनादेय का नियम से बंद करता है। ऊपर वाली तो ध्रुवबंदी नियम से वाली थी, अब यहां भी एकेंद्रीय जाति के साथ हुंड संस्थान ही बंधेगा, स्थावर तो बंधेगा ही, दुर्भग अनादेय भी बंधेगे, किंतु वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद। ऊपर जो ली थी वो नियम से बंधने वाली थी परंतु अनंत गुना अधिक थी, अब ये इनका भी जघन्य हो सकता है इसके जघन्य के साथ। यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। परघात, उच्छ्वास, आतक, उद्योग, बादर, पर्याप्त और प्रत्येक का कदाचित बंद करता है जो अनंत गुना अधिक होता है। देखो एकेंद्रीय जाति के जघन्य के साथ आतप का तो जघन्य नहीं होगा, उसका तो उत्कृष्ट हो सकता है, नहीं वो अभी नहीं लिया, यहाँ परघात उच्छ्वास की बात चल रही है, वो अनंत गुना अधिक होगा यहाँ पर। हाँ, परघात उच्छ्वास ये जो प्रकृतियां है वो नर गति के साथ या नारकीय तिर्यंच गति के साथ इसका उत्कृष्ट करेंगे, अब यहाँ कैसा होगा? ऐसा उत्कृष्ट नहीं, जघन्य करेंगे, यहाँ वो अनंत गुना अधिक हो रहा है। सुनो सुनो, साधारण सा शांति रखो, लोगों को एक एक जरा पचने दो। हम फास्ट बोलेंगे तो क्या हम बोल के गए वो सब छूट जाता है। देखो प्रघात की बात देखी, उच्छ्वास की बात देखी। आतप उद्योत एक इंद्रिय के साथ तो बन सकते हैं, एक इंद्रिय का जगन्य हो रहा है, आतप उद्योत का जगन्य नहीं होगा, क्योंकि एक इंद्रिय तो अप्रशस्त प्रकृति है, ये प्रशस्त है उनकी कंपेरिटिव, इसलिए वो भी अनंत गुना अधिक बन देगा। मादर पर्याप्त प्रत्येक का भी ऐसा ही लेना है, वो भी अनंत गुणा अधिक बनेगा, क्योंकि ये प्रकृतियां तो नरक गति तिरंज गति के साथ भी बनने वाली है और वहां वो जगन्य बन सकती है अति तीव्र संकलेश में। अब आगे वाला ग्रुप, सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ यशस कीर्ति और अयशस कीर्ति का कदाचित बंद करता है, किंतु वह जगन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजगन्य अनुभाग का भी बंद करता है, क्योंकि ऊपर हमने प्रघात उच्छ्वास पर्याप्त वगैरह लिए, वो कदाचित में ली, तो उसकी जो प्रतिपक्षी वो भी कदाचित बंदेगी और ये बंदेगी तो इसका भी जगन्य हो सकता है। बादर पर्याप्त का तो अनंत गुना अधिक होता है ऐसा कहा, परंतु इनका तो जगन्य एक इंद्रिय के जगन्य के साथ इनका भी जगन्य हो सकता है या जगन्य भी हो सकता है। यदि अजगन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। इसी प्रकार स्थावर प्रकृति की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, एक इंद्रिय के बदले बस वहां स्थावर रख सकते, अन्य कोई प्रकृति नहीं रख सकते। अब द्विइंद्रिय जाति के जगन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव तिर्यंच गति औदारिक शरीर तेजस शरीर कारवां शरीर औदारिक अंगोपांग प्रशस्त वर्ण चतुर्थ अप्रशस्त वर्ण चतुर्थ तिर्यंच गत्यानुपूर्वी अगुर लघु उपघात त्रस बादर प्रत्येक और निर्माण का नियम से बंद करता है, जो अनंत गुना अधिक होता है। ऐसा लेना द्विंद्रिय जाति का जगन्य कर रहा है तो वहां पर भी ये बाकी प्रकृति अनंत गुना अधिक बन देगी। कुंड संस्थान असंप्राप्त रूपाटी का सहनन, देखो द्विंद्रिय लिया ना इसलिए वो असंप्राप्त का लिया। दुर्भग और अनादेय का नियम से बंद करता है, किंतु वह जगन्य अनुभाग का भी बंद करता है और वह जगन्य अनुभाग का भी बंद करता है। देखो हमने हुंडक संस्थान का जगन्य एक इंद्रिय के साथ भी जगन्य कर सकता है लिखा था, नरक गति के जगन्य के साथ भी वो जगन्य हो सकता है लिखा था, है ना? अभी उसका सन्निकर्ष हमने नहीं देखा, तो वो जगन्य भी बन सकता है अजगन्य भी, और अजगन्य होगा तो छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। जगन्य भी हो सकता है, द्विंद्रिय के साथ भी जगन्य हो सकता है, ऊपर एक इंद्रिय साथ के भी जगन्य हो सकता है लिखा। हमने देखा था ना ये दो छह जो जोड़िया है उसका मध्यम परिणाम वाले की जगन्य होती है, तो कोई भी उसको बांध सकता है, यानी एक इंद्रिय जाति के साथ भी वो जगन्य बन सकती, द्विंद्रिय के साथ भी जगन्य बन सकते, मध्यम परिणाम वाले ले लेना है। परघात उच्छ्वास उद्योग और पर्याप्त का कदाचित बंद करता है, जो अनंत गुना अधिक होता है। अप्रशस्त व्याय गति अपर्याप्त स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ भूस्वर यशस कीर्ति और अयशस कीर्ति का कदाचित बंद करता है, किंतु वह जगन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजगन्य अनुभाग का भी बंद करता है। देखो यहाँ कोई ना कोई व्याय गति तो बंदेगी बंदेगी, कौन सी बंदेगी? अप्रशस्त ही बंदेगी, स्वर में भूस्वर ही बंदेगा और ये नियम से बंदेगा, परंतु यहाँ ऑप्शन क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर्याप्त भी लिया और अपर्याप्त भी लिया। पर्याप्त के साथ बंधेगी, अपर्याप्त के साथ नहीं बंधेगी। ऊपर भी देखो, नियम से बंधने वाली त्रस बाधा और प्रत्येक लिया, परंतु परघात उच्छ्वास और पर्याप्त को कदाचित में रखा, जो अनंत गुणादिक है, और इसलिए वो अप्रशस्त विहाय गति जो स्वर उसको भी कदाचित में रखा है। पर्याप्त के साथ बंधेगी और पर्याप्त के साथ नहीं बंधेगी, परंतु वो जो ये अप्रशस्त प्रकृतियां जो है, अप्रशस्त विहाय गति और अपर्याप्त वगैरह वगैरह जो स्वर है, उसका जघन्य भी बंद हो सकता है और अजघन्य भी हो सकता है। जहां द्विजेंद्रीय जाति का जघन्य है, वहां इनका जघन्य भी हो सकता है। और यदि अजघन्य अनुभव का बंद करता है तो वो छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। ये ख्याल में आई बात? द्विजेंद्रीय जाति के साथ हमने लगाया सब कुछ। इसी प्रकार तीनद्रीय जाति और चतुरीन्द्रीय जाति की मुख्यता से जानना चाहिए, यानी उसके साथ भी हुंडक संस्थान वगैरह जघन्य बन सकता है, क्योंकि वो मध्यम परिणाम से जघन्य हो रहे हैं। क्या प्रश्न है? अभी तो हमने देखा ना, यहाँ मनुष्य गति के साथ भी जघन्य देखा, वो पंचेन्द्रीय जाति थी। एकेन्द्रीय जाति के साथ भी उसका जघन्य हो सकता है, द्विन्द्रीय जाति के साथ भी जघन्य हो सकता है, मध्यम अजघन्य जघन्य रहना ना। इसलिए अपर्याप्त का उत्कृष्ट लेना होता तो सर्व संक्लेश लेते, अपर्याप्त का जघन्य है तो हम क्या कहेंगे उसको? मध्यम परिणाम। अब पंचेन्द्रिय जाति के जघन्य अनुभव का बंध करने वाला जीव, हमने हमेशा देखा ये तो शुभ प्रकृति है, उसका जघन्य कब होगा? सर्व संकलेश में, तो वो नरक गति या तिर्यंच गति। मनुष्य तिर्यंच नरक गति के साथ इसका जघन्य करेंगे, नारकी और देव है वो तिर्यंच गति के साथ जघन्य करेंगे। असंप्राप्त रूपाटिका सहनन, यदि तिर्यंच गति के साथ वो बंध रहा है तो असंप्राप्त रूपाटिका सहनन का बंध करेगा। दो अनुपूर्वी का कदाचित बंध करता है, कदाचित इसलिए लिखा है, नरक गति के साथ सहनन नहीं बनता है इसलिए कदाचित है, क्योंकि नरक गति बनती है या तिर्यंच गति बनती है। असंप्राप्त रूपाटिका सहनन बंधेगी या नहीं बंधेगी? प्रतिपक्ष के लिए नहीं लिया, नरक गति के साथ सहन नहीं बनता, परंतु तिर्यंच गति के साथ तो बंधेगा, परंतु वो कैसा होगा? अनंत गुणा अधिक होता है, क्योंकि पंचेन्द्रीय जाति का जघन्य है। ये कब होगा? सर्व संकलेश में, तब नरक गति तिर्यंच गति का तो उत्कृष्ट होगा, जिसको हम उत्कृष्ट नहीं कहेंगे, हम कहेंगे अजघन्य, परंतु वो कैसा अजघन्य? अनंत गुणा अधिक वाला। हाँ, और मनुष्य तिर्यंच नरक गति के साथ करेंगे। अब जो तिर्यंच गति का जघन्य कर रहे हैं ना, नरक गति के साथ पंचेन्द्रीय जाति का जघन्य कर रहा है, वो कौन सा शरीर बांध रहा है? दारी किया हो एक रेख, अंगोपांग में भी दो अंगोपांग का ऑप्शन होगा। तिर्यंच गति बनती है तो उद्योग बंधेगी या नहीं बंधेगी? तो उद्योग का कदाचित बंद करता है, इसलिए इन प्रकृतियों को कदाचित में लिया। ऊपर वाली भी कदाचित थी, नरक गति तिर्यंच गति असंप्राप्ता वगैरह भी कदाचित थी, परंतु अनंत गुणादिक थी। और ये जो कदाचित वाली जो ली है वो जघन्य अनुभव का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभव का भी बंद करता है। यदि अजघन्य अनुभव का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। तेजस शरीर, कार्मन शरीर, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अगुर लघु त्रिक, त्रस चतुष्क और निर्माण का नियम से बंद करता है, जो तंतु रूप होता है। ऊपर तंतु लिख दिया ना, तो तंतु तंतु यानी वो जगन्य भी अजगन्य भी, अजगन्य है तो छह स्थान पति प्रवृत्ति रूप होता है, तंतु रूप होता है। हम कहेंगे ये तंतु का क्या बंध होता है। कुंड संस्थान अप्रशस्त वर्ण चतुष्क उपघात अप्रशस्त विहाय गति और अस्थिर आदि छह का नियम से बंध करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है। देखो ये पंचेंद्रिय जाति का जगन्य सर्व संकलेश वाले को होगा, और ये जो अभी हमने देखा था वह हुंड संस्थान वगैरह कैसे बंधेगी, वो तो उत्कृष्ट बंधेगी। तो हम कहेंगे जगन्य के अजगन्य, तो कहेंगे अजगन्य अनंत गुणा के। इसी प्रकार त्रस प्रकृति की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। त्रस प्रकृति यानी जैसे पंचेंद्रिय के बदले में हम त्रस रखेंगे, बादर रखेंगे, पर्याप्त रखेंगे, केवल त्रस प्रूप को रखना, बादर पर्याप्त को बात नहीं करेंगे। यानी त्रस प्रकृति बस जैसे पंचेंद्रिय जाति पर लगाया है वैसे त्रस नाम कर्मों पर भी ऐसा ही लगेगा। दोनों में कदाचित मिले, क्योंकि नारकी वो तीरंज गति के साथ उसका जगन करेंगे, नारकी है या देव है, और मनुष्य तीरंज नर गति के साथ उसका जगन्य बांधेंगे, क्योंकि उत्कृष्ट संकलेश में वो जगन्य बंधेगी। त्रस का जगन्य को बंध कौन करेगा, चारों गति वाले, परंतु सर्व संकलेश में करेंगे। अब गति जाती हो गई, अब औदारिक शरीर के जगन्य अनुभाग का बंध करने वाला जीव, अब औदारिक शरीर या तो तीरंज गति के साथ बंधेगी या मनुष्य गति के साथ बंधेगी, और ये प्रशस्त प्रकृति है तो उसका जगन्य अति संकलेश में होगा, तो नियम से तीरंज गति तो बंधेगी। तो कहते हैं ये नियम से बंधने वाली बताएंगे पहले में, तीरंज गति कुंड संस्थान अप्रशस्त वर्ण चतुष्क तीरंज गत्यानुपुरी और अस्थिर आदि पांच का नियम से बंध करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है। देखो औदारिक शरीर तो प्रशस्त है, तीरंज गति मुंड संस्थान अप्रशस्त, ये सब जो है अस्थिर आदि पांच, ये सारे अप्रशस्त प्रकृतियां, और औदारिक शरीर का जघन्य संकलेश में हो रहा है, तीव्र संकलेश में, तो तीव्र संकलेश में ये जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं उसका तो जगन्य उत्कृष्ट बंध होगा, जो हम उसको कहेंगे जगन्य की अपेक्षा अनंत गुणाधिक है। अब औदारिक शरीर के जगन्य के साथ एक इंद्रिय जाति असंप्राप्त रूपाटी का सहन है अप्रशस्त वयागति स्थावर और दुस्वर का कदाचित बंध करता है जो अनंत गुणाधिक होता है। हाँ सर्व संकलेश है, तो एक इंद्रिय जाति का उत्कृष्ट होगा उसके साथ, इसलिए अनंत गुणा अधिक कहा, और वो कदाचित में रख रहे ना। अगर औदारिक शरीर पंचेंद्रिय जाति के साथ बांध रहा है जगन्य, तो असंप्राप्त रूपाटिका का वो अनंत गुणा अधिक बांधेगा। ख्याल में आती है ये सब बातें, दूसर का भी अनंत गुणा अधिक बताए। क्योंकि सर्व संकलेश परिणाम में नारकी के साथ यानी पंचेंद्रिय की जाति के साथ वो दूसर का जगन्य नहीं, उसका उत्कृष्ट होगा। हाँ या औदारिक शरीर के जगन्य के साथ ये दूसर का उत्कृष्ट हो सकता है, नारकी जीव तीरंज गति के साथ दुस्वर का उत्कृष्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, या देव तीरंज गति के साथ भी करेंगे उत्कृष्ट। समझ में आ रही बात, इसलिए दुस्वर का औदारिक शरीर के जघन्य के साथ उसका यानी अनंत गुणा कहेंगे। पंचेंद्रिय जाति औदारिक अंगों का आतप उद्योग और त्रस का कदाचित बंद करता है, क्योंकि हमने एकेंद्रीय जाति को भी तो कदाचित लिया, परंतु अनंत गुण आदि बंद किया, और पंचेंद्रीय जाति का कदाचित बंद कहा, किंतु वह जघन्य अनुभव का भी बंद करता है और अजगन्य अनुभव का भी बंद करता है। देखो औदारिक शरीर के साथ एकेंद्रीय जाति यानी ये प्रशस्त है वो अप्रशस्त है, इसलिए अनंत गुणा कही, परंतु औदारिक शरीर भी प्रशस्त है, पंचेंद्रीय जाति औदारिक अंगोपांग वो भी प्रशस्त है, तो यदि बनती है तो जगन्य भी बन देगी, ऐसा कहें आतक उद्योग को भी ले लेना उसके साथ। इसलिए जगन्य भी और जगन्य भी, यदि अजगन्य अनुभाव का बंध करता है तो वह छह स्थान प्रतीत वृद्धि रूप होता है, जो तेजस शरीर कार्मन शरीर प्रशस्त वर्ण चतुष्क। हाँ वही मैं पढ़ रही थी, जो क्यों लिखा है जो है वह जीव तेजस शरीर कर्मन शरीर प्रशस्त वर्ण चतुष्क अगुर लघुत्रिक बादर पर्याप्त प्रत्येक और निर्माण का नियम से बंद करता है। औदारिक शरीर की बात चल रही है, हाँ जो कि जरूरी नहीं है, क्योंकि औदारिक शरीर का जगन्य बंद करने वाला जीव, अब ये तो सब नियम से बंधने वाली बातें हैं, उसका जगन्य बंद हो रहा है, नहीं नहीं वह जो जीव नहीं वह यानी ऊपर का जो है औदारिक शरीर का जगन्य करने वाला, हमने देखा था एकेंद्रीय जाति या पंचेंद्रीय जाति बांधेगा, तो तेजस कार्मण ये सब तो बांधेगा ही, बरोबर जो नकल वो जगन्य अजगन्य अनुभव का बंद करता है, और यदि अजगन्य अनुभव का बंद करता है वो छह स्थान प्रति तो वृद्धि रूप होता है। इसी प्रकार उद्योत की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, जैसे औदारिक शरीर का है वैसे उन्होंने उद्योत के ऊपर घटित किया है।
औदारिक शरीर के साथ जगन्य के साथ पर्याप्त बंद करना चाहिए,
फिर से
औदारिक शरीर का जगन्य जो जीवन आरती करता है उसके साथ पर्याप्त बंद कर देना,
औदारिक शरीर का जगन्य करने वाला जीव
पर्याप्त बंद करना
नियम से बंद कर लिया, पर्याप्त के साथ लिया ना, मादा पर्याप्त प्रत्येक लिया, नियम से बंद करता है, सूक्ष्म पर्याप्त की बात नहीं ली, चारों गति क्यों करेंगे ना, एकेंद्रीय जाति या पंचेंद्रीय जाति के साथ सब कर सकते हो, तो देव को ही लेना है, औदारिक शरीर वो सूक्ष्म साधारण नहीं बांधता, इसलिए औदारिक शरीर का जगन उत्कृष्ट जगन उत्कृष्ट की अपेक्षा जगन नहीं मत लगा। देखो ये किसकी बात चल रही है, औदारिक शरीर का जगन है ना, गति जाति शरीर गति केंद्रीय जाति वगैरह औदारिक वगैरह का कौन है, मिथ्या दृष्टि देवनारी, इसलिए सूक्ष्म साधन अपर्याप्त को नहीं लिया,
क्योंकि मनुष्य के लिए औदारिक का जगन्य करेगा,
देखो क्या करना है, ये सर्वसंकलेश में बनता है जगन में, और मनुष्य तीरें सर्वसंकलेश में नरगति बांधेंगे, इसलिए इसको लिया मिथ्या दृष्टि देवनार की। इसलिए वो बांधर पर्याप्त प्रत्येक को ही लिया, क्योंकि वो सूक्ष्म साधारण पर्याप्त बांधते ही नहीं। अगर एक इंद्रिय जाति लेते तो देव को ही लेंगे, नारकी तो उसको भी नहीं बांधता है। एक इंद्रिय का जो ऑप्शन रखा है उन्होंने, वो देवों की अपेक्षा ऑप्शन रखा है।
हाँ।
और ऊपर के देव तो पंचेंद्रिय जाति के साथ उसका जगाने करेंगे, अब यही रुकेंगे। हाँ, स्वामित्व के साथ और स्लोली जाएंगे। जावाणी के ज्ञान पे सूर्य